हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है इस सप्ताह में पुरुषोत्तम वीक आषाढ़ मास। मेरे लिए बहुत ऐसा कभी मैंने बैठा नहीं था, अभी पहले याद नहीं आ रहा कि यहाँ ऐसे इतने सब सुविधाएं की गई है। यहाँ पे आप लोगों का उत्साह होगी, इतने जोरदार बारिश में आए हैं यहाँ, उत्साह से निश्चित कुछ अच्छा ही होगा। पहले बता देता हूँ आपको कि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है, तो पहले से जरूर बहुत कुछ आप लोगों को सुनाई मिलेगा जो नहीं सुनना चाहिए। वैसे पहले से माफी मांगता हूँ मैं, फिर भी विश्वरूप प्रभु ने कहा है तुम्हें भागवत कथा देना है, तो उन्होंने कहा है तो उनको तो कैसे ना बोले, कोशिश किया थोड़ा नहीं हो। फिर भी तो बहुत पावन महीना है, तो जो कुछ हमने सुना है भक्तों के संग में और आप लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, हम लोग उत्साह से निश्चित कुछ ऐसे विषय आएगा जिससे हम सबकी शुद्धिकरण होगी। मनुष्य जीवन शुद्धिकरण के लिए है, तो किस तरह से हम समय बिताते हैं ये हमारे हाथ में, तो ऐसा मौका बहुत कम होता है जहाँ हम एक साथ आते हैं और कथा सुनते हैं, और इस कथा से क्या लाभ होता है हमारे समझ के बाहर है। तो हमें श्रद्धा है कि बहुत लाभ होता है, किस तरह का लाभ होता है हमें मालूम नहीं, लेकिन लाभ जरूर होता है। हरे कृष्ण। सो आप सब लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, आप लोग यहाँ पे वरिष्ठ बहुत सारे भक्त हैं, शुरू प्रभु दिखाई दे रहे हैं, विराज प्रभु है मेरे सीनियर्स हैं, माधव प्रभु भी बैठे हैं यहाँ पे पीछे, हरिभाव प्रभु। तो मुझे बताया है कि तीसरे स्कंद शीर्षक ऐसे दिया गया है कर्दम मुनि और देवती का विवाह, ऐसे शीर्षक दिया, तो ये तीसरे स्कंद में आता है। श्रीमद् भागवतम ने भगवान हमें आदेश या इंस्ट्रक्शन देने के लिए बहुत सारे माध्यम का उपयोग करते हैं, खास करके किसी व्यक्ति के द्वारा बताते हैं। भगवान की लीला जानना बहुत मुश्किल है। भगवद गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि जो कोई मेरा जन्म कर्म को अगर जान लेता है तो फिर वो इस संसार से मुक्त हो जाता है, सीधा मेरे धाम पे चले जाता है। लेकिन उनकी लीला समझना कितना समझेंगे हम, सुनने के लिए अच्छा लगता है जरूर, लेकिन उनके जो भक्त होते हैं उनके भक्त पूरी तरह से उन भगवान के आश्रय लिए हैं, तो उनके मन में सिर्फ भगवान ही केंद्रित है, तो उनकी जीवन चरित्र या उनके बारे में सुनना वो भी भगवान के बारे में सुनने जैसा ही है। तो यहां श्रीमद् भागवतम में विदुर जी इतने उत्साह से पूछ रहे हैं, उत्साह आप समझते उत्साह कैसे होना चाहिए, विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, वो तो सब ऐसे, लेकिन फिर भी अपने सीनियर से मिलते हैं, जब सीनियर के सामने आते हैं तो ये नहीं सोचते कि यार मैं तो सब जानता हूँ, वो तो मैत्रेय मुनि के मुख से सुनना चाहते, तो इतने उत्साह से पूछना चाहते, मुझे ये बताओ ये ऐसे कैसे हुआ, यहाँ पे क्या हुआ। तो ऐसे यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं कि स्वयं हुआ मुनि, हाँ, ये किस तरह के राजा थे और क्या हुआ आगे, उनकी पुत्री कन्या देहावती हाँ किस तरह से हुआ, इस तरह से प्रश्न पूछते हैं बहुत ही उत्साह से, इतनी आतुरता से कि पूरी तरह से मन सबको केंद्र कर कर कि बस इससे ज्यादा कुछ है नहीं जीवन। सो भगवान की महिमा है, लीला है कि कैसे वो दूसरे ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बताते हैं कि भक्ति प्राप्त करना कोई भी कर सकता है। जैसे चैतन्य चरितामृत में भगवान एक ऐसे व्यक्ति के जीवन से बताते हैं कि जो इतना गरीब है कि उसके पास कुछ नहीं है। कई बार हम सोचते हैं ना, इतना गरीब हूं मैं, कैसे मैं करूंगा भक्ति, हाँ मेरे पास कुछ नहीं है। कोलवेचा श्रीधर धाम का एक भक्त था, उससे ज्यादा गरीब हो सकते हैं आप, कितने गरीब हो सकते हैं, उसके पास कुछ नहीं, कपड़ा भी नहीं था, घर भी नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं थे। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी भगवान को खरीद सकता है। भगवान को खरीदना है नहीं, आसान है, खरीद लेता है भगवान को, भगवान उसके वश में आ जाते। तो ऐसे ऐसे भी व्यक्ति को दिखाया, जैसे रामानंद राय चैतन्य जी बड़े गवर्नर थे, बहुत पैसा है, नाम है उनके भी, ऐसे स्थिति में भी उन्होंने भी भगवान को खरीद लिया। यानी भक्ति ऐसी भौतिक अवस्था के ऊपर आधारित नहीं है। कोई भी स्थिति में वो ये नहीं कह सकते हैं मैं कैसे करूं भक्ति, कोई भी कर सकता। तो वैसे स्वयं हुआ अपनी स्वयं हुआ मनु, बहुत बड़े राजा थे, कोई ऐसे साधारण राजा नहीं है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने पहले अपने पुत्र कुमार, चार कुमार थे, उन लोगों को कहा कि तुम्हें प्रजापति बनना चाहिए, उन्होंने इनकार कर दिया। कहा जाता है कि ये जो आदेश है अब गुरु के इनकार कर सकते हैं। गुरु कहते हैं कि तुम्हें विवाह करना चाहिए, अगर कोई ब्रह्मचारी पालन करना चाहते हैं बोलते हैं नहीं, मैं इसमें नहीं फंसना चाहता हूं। तो विरोध नहीं होता क्योंकि कुछ ऊंचे लक्ष्य के लिए वो नकारता है। तो जब ऐसा करते तो ब्रह्मा जी थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। तो नाराजगी से उनके दोनों आंखों के बीच में से रुद्र जी आते हैं। भगवान शिव का वैसे जन्म ब्रह्मा जी से वैसे होता है। उसके बाद में इवन स्वयं हुआ जो मन है उनका भी जन्म ब्रह्मा जी से। तो जब स्वयं हुआ मन से पूछते हैं, अभी स्वयं हुआ कोई साधारण नहीं है, तुमसे पूछते कि तुम्हें प्रजापति बनना है, स्वयं भगवान का क्या जवाब होता है? आप जो कुछ भी कहते हैं मैं सबके लिए तैयार हूं, बताइए क्या करना, पूरी तरह से शरण, जो भी बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार। तो इस तरह से स्वयं हुआ मनु ऐसे राजा थे कि वो जब सोने जाते थे रात को, पूछा कीजिए कैसे सोते थे वो, ऐसे कुछ शहनाई बजती थी, भगवान की कथा होती थी। तो कथाओं को सुनते 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 वो सो जाते थे। यानी वो अगर सपना भी देखते तो भगवान ही सपना, उसी तरह से अगर जागते हैं तो फिर से उसी तरह के भगवान की कथाओं को सुनते वो जाग जाते हैं। और पूरा दिन उनका भगवान के सेवा में लगा हुआ, इस तरह के। तो उनकी उन्होंने इस तरह राज्य संभाला। मनु के बारे में आप जानते हैं कि वो तो व्हाट वी कॉल मैनकाइंड उनकी राजा है। नहीं, सब तरह के जो कुछ मनु संहिता ये सब सुनते हैं हम, उन्होंने सब रूल्स बनाया कि किस तरह का सभ्यता होना चाहिए। तो उन्होंने अपनी कन्या देहवती का इस तरह से परवरिश किया। आप सोचिए कैसे परवरिश, कि कभी उनको, अभी उन दिनों की सभ्यता ऐसी थी, आज भी अगर आप राजस्थान जयपुर जाएंगे कुछ ऐसे राजमहल देखेंगे, आप राजमहल में वहां की खिड़की में बाहर के लोग अंदर कोने नहीं दिखाई देता, लेकिन अंदर जो है वो लोग देख सकते हैं बाहर के लोग, उस तरह से डिजाइन किया है। सो जो कन्या होती है उनको दूसरों का नजर नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दूसरे अगर नजर डालते हैं तो उनकी कोई अच्छी तरह से नजर नहीं डालता, कुछ भावनाएं ऐसी होती है उससे वो कन्या भी दूषित हो जाती है। तो इसलिए पिता बहुत ही ध्यान देता है कि मेरी पुत्री है उसकी किसी ऐसे लोगों का नजर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन देवहूति का खूबसूरती के बारे में इतना बताया गया है कि वैसे बाहर तो दिखाई नहीं देती थी, लेकिन कभी छत के ऊपर कोई देवताएं ऊपर से जाती हैं तो कि सुंदरता को देखकर बेहोश हो जाती है। और इस तरह से परवरिश किया हुआ देवहूति जब समय आता है, पिताजी के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना कन्या की विवाह करना, जब समय आता है तो कौन अच्छा वर होगा, सबसे अच्छा वर कौन हो सकता है, ऐसे कौन सोच रहे हैं देवहूति के पिता। तो अलग 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 तरह के विवाह होते हैं वैदिक सभ्यता में, लेकिन सबसे ऊंचा श्रेष्ठ होता है कि जो माता पिता है वो अपने कन्या के लिए देखते हैं कि कौन हो सकता है। क्यों, जब हम उनके ऊपर ही छोड़ देते हैं ठीक है तुम्हें ढूंढ लो, तो ज्यादातर हमारे इंद्रियों को जो पसंद आता है उस स्तर पर हम चुनते हैं, लेकिन जब माता पिता चुनते हैं तो वो ये सब देखते हैं इनमें गुण क्या है, बेटी सुखी रहेगी। सो इस तरह जब स्वयं गुरु के उनके मन में विचार आता है कि तो खड़ा होने के बारे में सोचते हैं, आप सोचिए हाँ ये कहाँ पे पली हुई है, राज दरबार में जहाँ सोती है तो किस तरह का आलिशान, और यहाँ पे खर्दा मुनि जो जिनका घर भी नहीं है, उनके पास पैसा भी नहीं है, और खाने के लिए भी कुछ जो ही पेड़ से जो गिरा हुआ वही चीज खाते हैं, सोने के लिए कुछ जगह नहीं है, तो ऐसे वर को ढूंढते आप सोचिए। यानी इसका मतलब है ये नहीं देखते हैं कि वो इसके पास कितना धन है, किस तरह का घर है, इसमें क्या गुण है, गुण क्या है, क्योंकि माता पिता का एक कर्तव्य होता है कि जो भी उनके अधीन होते हैं पुत्र हो या पुत्री हो ये सोचते कि मैंने जन्म दिया है तो फिर मेरी जिम्मेदारी है कि इनको किस तरह से जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं मुक्त करूं। तो उसी नजर से देखते कि विवाह भी करना है तो वही देखते कि इसके लिए अनुकूल है या नहीं। तो इस तरह वो और अपनी उनकी रानी दोनों मिलकर चले जाते हैं उस जगह पर। अभी खड़दा मुनि ऐसे व्यक्ति हैं, इतने तपस्या किया उन्होंने, उनकी तपस्या को देखकर स्वयं भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू आते हैं। इसकी आंखों से आते हैं, भगवान के आंखों से आंसू आने लगते हैं उनको देखकर, और वो आंसू से खड़दा मुनि जहां तपस्या कर रहे हैं वो आंसू के पानी वहां पर जमा होकर एक सरोवर बन जाता है, इसको कहते हैं बिंदु सरोवर। तो उस जगह पे खड़दा मुनि तपस्या कर रहे हैं, उनके तपस्या से प्रत्यक्ष भगवान स्वयं आकर उनको दर्शन देते हैं, और वो दर्शन करते हुए खड़दा मुनि पूछते हैं उनसे कि मैं पूछना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं पूछ लेता हूं, मेरा एक भौतिक इच्छा है कि मैं विवाह करना चाहता हूं। ये खड़दा मुनि पूछते हैं, तो भगवान सब कुछ वरदान देते हैं, बताते हैं कि कुछ दिन में तुम्हें स्वयं भगवान मनु अपनी कन्या को लेकर यहां आएगी। खड़दा मुनि को मालूम रहता है ऐसे होने वाला है। तो कुछ ही दिन के बाद स्वयं हुआ मनु अपने रानी के साथ देवहूति को लेकर आते हैं उस जगह पर। जैसे खड़दा मुनि को देखते हैं इतने बड़े राजा, लेकिन देखकर उनको प्रणाम करते हैं, अपने सर झुकाकर पूरे प्रणाम करते हैं। आप देखिए कितने बड़े राजा, लेकिन किस तरह का एक व्यवहार होता है जब वो एक ब्राह्मण या ब्रह्मचारी जो आत्म साक्षात्कार हुआ है कितना उनका इज्जत करता। तो कर्दम मुनि भी उनको देखकर बहुत उनकी स्तुति करते हैं कि आप यहाँ आए हैं, तो राजा का कर्तव्य क्या होता है, राजा क्या करता है, अगर राजा नहीं है प्रजा की क्या हालत होगी, किस तरह से आप सुरक्षित रखते हैं, इस तरह के बहुत सारे उसके करने के बाद फिर वो अपना प्रस्ताव रखते हैं कि मेरी ऐसी ऐसी कन्या है और मैं तुम्हारे साथ उनकी विवाह करना चाहता हूँ। तो कदम उनको मालूम होता है कि ऐसे ऐसे, तो उन्हें कौन उनको नहीं स्वीकार करेगा। तो उसके बाद कथा तो वैसे बहुत डिटेल्स में है, हम तो संक्षेप में बता रहे हैं कि उसके बाद जब एक कन्या को दिया जाता है कि पिता ये सोचते हैं कि ये कन्या जो है मैं इनको दे रहा हूं तो पूरा जीवन ये मेरी कन्या को संभालेगी। तो इस तरह से देते वक्त वो कुछ देना चाहते हैं, है ना। आज के दिन उसे दहेज के नाम पे बहुत कुछ गलत हो रहा है, तो सब कुछ देना चाहते हैं कि पूरी तरह से और इतने कृतज्ञता से कि जो मेरे कन्या को स्वीकार कर रहे हैं वो और उनके परिवार के लोग उनके ऊपर इतने कृतज्ञता से देते हैं। तो ये दहेज के बारे में जो आजकल जो एक प्रथा है जहाँ माता पिता अपने खुशी से एक ये समझकर कि इसकी पूरी जीवन तक इनको इसकी देखभाल होगा, बहुत अच्छी तरह से होगा, तो हमारी तरफ से हम दे रहे हैं खुशी से, ऐसे नहीं कि उसे डिमांड करें। हम जो सुन रहे हैं न्यूज़पेपर में किस तरह के कई बार ऐसे जलाया जाता है, डिमांड किया जाता है, तो ये जो ना समझ है, नहीं मालूम है इसके पीछे क्या है, तो ऐसे लोग सिर्फ लालच में इस तरह के कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो दहेज एक देना है पता है, लेकिन इसमें ये नहीं है कि डिमांड किया जाता है, सही है। तो इस तरह से देहवती का विवाह करते हैं कि माँ फिर उनको छोड़ के जाते हैं राजा और रानी। उसके बाद जो सेवा होता है, आप सोचो देहवती, आप सोचिए देहवती किस घर से आई है, हाँ, और यहाँ पे कर्दम मुनि इतने व्यस्त है, कितने सालों तक उन्होंने देहवती का चेहरा भी बराबर से देखा नहीं। और देहवती कर्दम मुनि पूछने के पहले ही उनको क्या इच्छा है वो पहले से लाके रख देती थी, उनको पूछना ही नहीं पड़ता था। अगर वो कुछ यज्ञ कर रहे हैं उनको मालूम है कि अभी कौन सा फल या कौन से वनस्पति की जरूरत है, तो पूछने के पहले लाके रख देते। और यही नहीं, यहाँ पे एक ऐसा श्लोक है, देखते हैं हम कुछ भागवत कथा है तो कुछ श्लोक होना चाहिए, नहीं श्लोक नहीं, सो देवती के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से अपना पति का सेवा किया। यहाँ एक श्लोक बताया गया है कि ये तीसरा स्कंद 23वां है, तीसरा श्लोक है, विश्रम्भेनात्म शौचेन गौरवेन दामेन च शुश्रूषाया सौलधेन वाचा माधुरया च। देवती ने अपने पति का इतना इज्जत और अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हुए बहुत ही प्रेम से और बहुत ही स्वीट वर्ड्स को क्या बोलेंगे हिंदी में, मधुर शब्द। देखो मधुर शब्द कितना जरूरी होती है एक रिश्ते बनाने के लिए, खास करके गृहस्थ आश्रम। आप अच्छे से भी प्रेम से भी बोलना चाहते हैं, लेकिन अगर मधुर नहीं है उसमें तो फिर वो क्या फायदा है? मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन नहीं सोचा होगा, लेकिन तो बोलने का जो टोन है उसे बहुत, पति और पत्नी के बीच में जो रिश्ते होते हैं वो इतने आसानी से बनते नहीं है। ऐसे नहीं कि विवाह हो गया और रिश्ता एक दूसरे को पहचान लेते हैं, कहीं साल लगते हैं दूसरे को जानने के लिए, और जानने के लिए, लेकिन अब जानने में जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन बनता है तो उस तरह से कितने साल के बाद फिर पहचान में आता है, हाँ ये जब ऐसे बोलती है तो इसका मतलब ऐसा है। मुझे तो कुछ ऐसा लगता था, कुछ और लगता। तो उसी तरह से पति जब ऐसा बोलता है इसका मतलब ऐसा है, क्योंकि दोनों का सोचने का विचार अलग होता है। तो एक बार जब समझ जाते एक दूसरे को, उसके बाद फिर वो रिश्ता इतना क्या बोलते इतने उसके गहरा होता है कि उसके बाद किसी तरह की समस्या आ जाए दोनों साथ साथ उसके सामना करें। लेकिन अगर रिश्ता नहीं है तो फिर ऐसे सब समस्या आती है, तो फिर करीब आने के बदले में दूर चले जाते। इसलिए तो यहां देवावती इतने साल तक उन्होंने इस तरह की सेवा किया, और करदम मुनि को कुछ मालूम ही नहीं कहा है कितने साल तक। तो इस हालत में देवावती का जो शारीरिक स्थिति है बहुत बिगड़ती गई, और कभी देवावती को ऐसा लगा नहीं ये मैंने क्या किया, मैं किस घर से आई हूं, मैं मेरे घर में कितने नौकरानियां हैं, क्योंकि देवावती को ये मालूम था कि मेरे जो पति है क्या कर रहे हैं, किस तरह से सेवा कर रहे हैं। अगर मैं सिर्फ इनकी असिस्ट करूं इनको तो वो जिस दिशा में जा रहे हैं ये निश्चित है कि मैं भी वहीं जाऊंगी। तो इस तरह के उत्साह से कर और समस्या कर बहुत कठिन था। तो इतने सब होने के बाद खड़दम मुनि फिर एक बार देखे उनकी देवावती तो चौक कह रहे ये कौन है मेरे साथ। तो उनको बहुत बुरा लगा, अरे ये तो देवावती है। तो देवावती की इस तरह की हालत देखकर तो उन्होंने कहा मैं जो प्राप्त किया है, मैंने तो प्राप्त किया मेरे तपस्या से, मैं अभी तुम्हें वही देना चाहता हूं। कैसा लगता है आपको सुन के? अगर पति ऐसे कहा तो आपको इस तरह के पति होना चाहिए। इतना आध्यात्मिक उसने कमाया है उसके बाद ठीक है, ये भी सच है। लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं होता है कि अगर पति ऐसा सोचने लगे ठीक है मैं मंदिर जाता हूं तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर को संभालना चाहिए, क्योंकि पति खुद अपने औरत को प्रेरित नहीं कर सकता है। और ये भी सच नहीं है, ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर पत्नी कह रहे घर का काम कोई जरूरी नहीं है मैं मंदिर चले जाती हूँ, घर में सब घर का काम छोड़ के मंदिर भाग गए, ये भी गलत है। हाँ तो दोनों गलत है वैसे। अगर पति सोचता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है मैं जा रहा हूँ ठीक है, और ना ही पत्नी ऐसे सोचे, और नहीं पत्नी ऐसे भी सोचे अरे घर में बस बच्चों को ही संभालना यही सबसे बड़ी सेवा है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं, वो भी गलत है। तो प्रेरित होने के लिए पति को भी पत्नी को भी, क्योंकि प्रेरित एक दूसरे को नहीं कर सकते, तो दोनों को जब समय मिलता है तो मंदिर जाना। तो ये नहीं कि घर की जिम्मेदारी को छोड़ के भागना, नहीं ये भी नहीं कि बस घर के काम में लगा हुआ है कि मंदिर जाने के लिए कोई नहीं जरूरत नहीं है, वो भी सही है। कलयुग में प्रेरित होने के लिए पति को भी समझना चाहिए कि मेरी पत्नी को अगर प्रेरित करना है तो मुझे उसे भी मंदिर ले जाना है, पत्नी भी सोचना चाहिए कि जब अगर मौका मिला तो मैं भी जाना चाहती हूँ। इस तरह से सोचना चाहिए कि किस तरह जब पति और पत्नी साथ आते हैं तो सब कुछ कार्य साथ साथ करते हैं, और साथ साथ करने में वो आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ अच्छा बताया गया है करदम मुनि और देवावती। यहाँ पे करदम मुनि देवावती को देखकर तो देवावती क्या करे, करदम मुनि समझ जाते हैं। फिर देवावती याद दिलाती है करदम मुनि को, जब विवाह हुआ था करदम मुनि ने एक कंडीशन रखा था, उन्होंने कहा था अपने स्वयंभू मुनि उनको कहा था ठीक है मैं तो विवाह करूंगा, लेकिन जब ही गर्भ धारण करेगी, जैसे ही गर्भ धारण करेगी मैं चला जाऊंगा। अभी ये तो कर्जा मुनि के विचार थे, ऐसे तो ऐसा नहीं कि कहने का मतलब है कि गृहस्थ जीवन में ऐसा नहीं कि पूरे अंतिम समय तक घर के जिम्मेदारियों में फंसे रहें। समय ज्यादा निकलना पड़ता है जैसे ज्यादा ज्यादा आदमी उम्र बढ़ती जाती है। तो देवतियां याद दिला दिए कि आपने तो ऐसे कहा था, तो उनको याद दिलाया और कर्दम मुनि भी समझ गए। लेकिन देवती की हालत इतनी खराब थी, उन्होंने कितने सालों से उसके बाल पूरे ऐसे और शरीर भी पूरे बिना कुछ खाते हुए पूरे ऐसे एकदम, क्या मुझे क्या कहेंगे ऐसे। हाँ तो कर्दम मुनि ने क्या करे भी? तो अपने योग सिद्धि पावर से उन्होंने ऐसा एक महल बनाया। आप सोच सकते हैं कैसा महल होगा, हम तो हमें तो सिर्फ 3 बेडरूम फ्लैट इसके बारे में मालूम है, कितना बड़ा से बड़ा कितना हो। इन्होंने ऐसा एक हवा महल बनाया, हवा महल समझते हो, ऐसा हवा में तैरता हुआ महल, ऐसा महल बनाया। और देवती देखकर एकदम चौंक गए, ये क्या है मेरे पति की बात, शक्ति किस तरह की शक्ति है। फिर कर्दम ने कहा अगर अभी तुम इस बिंदु सरोवर में जाकर स्नान करो, तो देवती बिंदु सरोवर में जाकर स्नान करती है। तो कहा गया है इसमें भागवत में कि जब अंदर जाती है पानी में तो अंदर उसको बहुत सारे ऐसे नौकरानियां, कोई साधारण सब आते हैं, इतने सब सेवा होती है, बहुत डिटेल में दिया है कि उसके बाद देवती बाहर आती है बहुत ही आकर्षित, जैसे पहले थी, जैसे पहले थी। देवती के बारे में सुना था लेकिन बहुत कुछ तपस्या के बाद फिर से। फिर कर्दम मुनि देवती को उस हवा महल में लेकर बहुत पूरे ऐसे 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 जगह पे चले जाते हैं, कितने समय चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो वही जगह पे आते हैं जहां पे वो तपस्या कर रहे थे। उसके बाद कहा गया है कि कर्दम मुनि 9 तरह से विस्तारित होते हैं और 9 तरह से विस्तारित होकर देवती के गर्भ में 9 कन्याएं उनका जन्म होता है। तो उन्होंने कहा है कि एक बार क्या बोलते गर्भ धारण करने के बाद तो देवती तभी प्रार्थना करती है, उनसे पूछती है ठीक है आपने तो सब कुछ ये सब दिया है, लेकिन इस संसार के ये जो भयभीत स्थिति है उसे मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। तो कर्दम मुनि समझ जाते हैं कि देवती क्या चाहती है, इतने सब होते हुए देवती की इच्छा नहीं है इसमें, ये सब है। तब कर्दम मुनि कहते हैं कि कुछ इस निश्चित तुम्हारे कर्म में स्वयं भगवान प्रकट हो और वो है कपिल देव। तो फिर उसके बाद जब कर्दम मुनि को भी पता चल जाता है कि कर्दम भगवान स्वयं आ रहे, तो वो खुद ही भगवान की याचना करते हैं और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं और उसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। और उसके बीच में ब्रह्मा जी भी आके मिलते हैं। तो वैसे यहाँ पे ये भागवत कथा में मैं ये सुना ये जानना जरूरी है कि किस तरह से उन दिनों में किस तरह की एक सभ्यता थी और किस तरह से स्वयं मनु अपने कन्या को एक कर्दम मुनि जैसे व्यक्ति, लेकिन उसका अंत क्या हुआ। हाँ कर्दम मुनि जाने के बाद फिर भगवान कपिल देवती अपने माँ को, इसलिए कहा जाता है कि जो पुत्र होता है ऐसे नहीं किसी माता पिता, केवल पुत्र का भी, इसलिए पुत्र कहा जाता है कि अगर पुत्र का भी कर्तव्य होता है कि किस तरह से वो माता पिता को भी इस संसार के इस बंधन से किस तरह से, इसलिए पुत्र का ये भी एक जिम्मेदारी होता है। तो यहाँ पे स्वयं कपिल देव आकर अपने माँ को सांख्य फिलॉसफी जो है हम उसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन सांख्य फिलॉसफी संक्षेप में यही है कि जिस तरह से हम यहाँ संसार में भौतिक चीजों को देखते हैं उसका भी एक कुछ कारण होता है, सबका एक कारण होता है, सबका कारण होता है। जैसे पेड़ है, पेड़ का एक कारण है, उसका जड़ होता है, अगर जड़ का पानी देते हैं तो पानी सब तरह पहुंच जाता है। तो इसी तरह से भक्ति जो है, अगर भक्ति करने से सब तरह पानी, जैसे पेड़ कभी पेड़ को, पेड़ के पत्तों को भी पानी डालना, ये भी पेड़ को पानी डालने जैसा ही है, पेड़ के जड़ को भी डालना, वो भी पेड़ को पानी डालने जैसा है, लेकिन पूर्ण नहीं है ना। अब पत्तों को पानी डालेंगे कहां तक पानी पहुंचे, लेकिन पेड़ की जड़ पे डालेंगे तो पानी सब जगह पे। इस तरह से कपिल देव अपने माँ को बताते, फिर माँ अपने बेटे के कहने अनुसार बताया गया कि करती है और इस संसार से वो भी मुक्त हो जाती है। तो ये है कर्दम मुनि और देवती की ये कथा। देखते हैं यहाँ पे मनु के और दो पुत्र थे, एक तो थी देवती कन्या, लेकिन उनके और भी दो पुत्र थे, उनका नाम था उत्थानापाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत तो शुरुआत से ही वो कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो नारद मुनि के आदेश अनुसार वो चले गए तपस्या के लिए। फिर उत्तनापाद थे, फिर उत्तनापाद की कथा आगे बढ़ती है किस तरह से उत्तनापाद के दो पत्नियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। तो उनके पुत्र थे, एक ध्रुव सुनीति के और सुरुचि के थे उत्तम। तो यहाँ पे ये चौथे स्कंद में आता है, कहा जाता है कि एक बार ऐसे हुआ कि उत्तनापाद अपने गोद में उत्तम को लिए बैठे थे, तो ध्रुव जो है 5 साल का लड़का था, तो उसे भी लगा कि मुझे भी मेरे पिता के गोद में बैठना चाहिए। जब ने देखा कि उसका भाई सौतेला भाई बैठा है, तो उसको भी दिल लगा कि बैठना चाहिए। तो जब ध्रुव ने प्रयास किया बैठने का, तो उसकी सौतेली माँ सुरुचि, जो अपने राजा के लिए बहुत प्रिय थी, तो उसने कहा कि अगर तुम्हें यहां पे बैठना है तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना चाहिए था, क्योंकि तुमने मेरे कोख से जन्म नहीं लिया है तो तुम यहाँ पे नहीं बैठ सकते। 5 साल का लड़का है, बच्चा है, देख रहा पिता की तरफ कि पिता कुछ बोलेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश पिताजी ने कुछ बोला ही नहीं। उनको लगा कि सुरुचि को अच्छा नहीं लगेगा मैं कुछ बोलूंगा, तो चुप बैठ गए। और 5 साल का लड़का अपने पिता की तरफ देख रहा है कि पिता कुछ तो बोलेंगे, पिताजी ने कुछ नहीं बोला, तो इतना दर्द हुआ, उसके हाथ कांपने लगे, उसके ओंट कांपने लगे, इतना वो अपने सौतेली माँ की तरफ देखने लगे, सुरुचि की तरफ, कैसा है सर, कि अंदर ही अंदर मुझे एक ऐसे भावना है कि ऐसे क्यों हो रहा है मेरे साथ। और वहां से 5 साल का लड़का भागने लगा वहां से, इतने हृदय में है क्यों ऐसे हुआ मेरे साथ, और अपने मां के पास आता है। और मां तो देखते हैं कि उसका बेटा इतना घबराया हुआ है और इस तरह, तो पूछती है क्या हुआ, लेकिन ध्रुव कुछ बोलता नहीं है बेटा। लेकिन उस माँ को दूसरे किसी ने आके बता देते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो माँ सुनीति समझ जाती है कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ध्रुव पूछता है अपने माँ से, अगर ये है कि मैं राज आसन में नहीं बैठ सकता, तो मेरी इच्छा है कि मैं मेरे जो परम पिता है ब्रह्मा जी, उससे भी ऊंचा जो राज होगा ये मैं प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये तो कैसे होगा, सुनिधि कहती है तो बहुत नामुमकिन है। बोलते नहीं मैं करना चाहता हूं, मुझे चाहिए। तो उसके एक बदले की भाव ध्रुव में थी। तो फिर अपनी मां सुनिधि कहती है कि मैंने सुना है कि ये सिर्फ तुम्हारी ये जो इच्छा है सिर्फ भगवान ही पूर्ण कर सकते हैं। तो ध्रुव पूछता है अगर भगवान ही कर सकते हैं तो कहाँ है भगवान। तो मैंने सुना है कि बहुत ऋषि लोग जंगल में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ये 5 साल का इतना ही सुनता है कि भगवान जंगल में है, ऋषि मुनि लोग जंगल में चले जाते हैं, और मेरा जो इच्छा है सिर्फ भगवान ही प्राप्त कर, भगवान ही पूर्ण कर सकते, बस इतना ही सुना है। और बस ये सुनकर वहां से बस कोपिंग, 5 साल का कुछ कोपिंग पहना है और कुछ है नहीं, पहनकर सीधा घर से ऐसे निकल जाता है। अभी जंगल की ओर निकल जाना, अभी क्या चांस है उसकी कि जीवित वापस आए। तो जब इस तरह से जाता है तो नारद मुनि जो है, नारद मुनि को पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और वो इसके रास्ते में बीच में आते हैं, पूछते हैं ध्रुव से तो क्या हुआ, कहाँ जा रहे। ध्रुव बताते हैं कि मैं इसलिए जा रहा हूं। तो नारद भी बताते हैं अरे तेरा तो खेलने का समय है, तो 5 साल का है, वापस चले जाओ, सब कुछ ठीक होगा, भूल जाओगा, तो मेरी सौतेली माँ भी भूल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्रुव कहता है कि मैं, मेरे लिए आप बताओ कि मैं इसलिए जा रहा हूं, आप इसके लिए कुछ मदद कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरे रास्ते से आप हट जाओ। तो नारद मुनि समझ जाते हैं कि यार ये तो बहुत ही दृढ़ता है इसमें, फिर भी थोड़ा टेस्ट करते हैं। तुम्हें मालूम है जंगल में क्या है, वहां पे एकदम अंधेरा है, वहां पे ऐसे जानवर है, तो कैसे ले सकोगे, खाओगे क्या तुम। लेकिन ध्रुव एक भी बात नहीं मानता है, आपसे मुझे बताइए मुझे किस तरह से भगवान को प्रसन्न करना है, किस तरह से मुझे ये वरदान चाहिए। जब ये दृढ़ता दिखता है, अभी इसे हमें भी कुछ सीखना है, ऐसे नहीं कि हम कई बार हम बहुत साल भक्ति में हैं तो मैं तुम्हारा जप कर रहा हूं और मैं किसी को दर्द भी नहीं देता, कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, पुण्य काम कर रहा हूं। इस तरह के जो विचार हमारे में आते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, सिर्फ आलसपन आ जाता है, हम आलसी बन जाते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं अच्छी, इससे ज्यादा क्या कर रहे हैं। लेकिन जब तक इतने तीव्रता भाव नहीं आती जिस तरह की ध्रुव की, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं यानी कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो जब नारद मुनि पहचान लेते हैं तब उन्हें समझ जाता है कि ये, तो फिर उनको बताते हैं कि ध्रुव तुम ऐसे जगह चले जाओ, यहां पे एक वन है जिसका नाम है मधुवन, और वहां पे तुम ये मंत्र का जाप करो। क्या मंत्र है वो, ओम नमो भगवते, ये मंत्र बताते हैं और बताते कि कैसे करना है। तो जुड़ जाता है अंदर, और कुछ शुरुआत में तो कुछ समय के लिए अपने मट्टी से कुछ भगवान के ऐसे विग्रह बनाकर उनकी पूजा करता है। फिर शुरुआत में तो सिर्फ पेड़ से जो भी पड़ते हैं फल हो, और एक समय के बाद फिर पत्ते पड़े वो खाता है, फिर सिर्फ पानी पीने लगता है, फिर सिर्फ सांस लेता है, कुछ खाता नहीं है, फिर सांस भी रोक लेता है। तो जब सांस भी रोक लेता है तो पूरा ब्रह्मांड में पूरा सफोकेशन हो जाती है। तो देवतागण भागते जाते हैं भगवान के पास, ये क्या हो रहा है। ध्रुव ने जहां पे एक पैर पे खड़े हुए, ध्रुव अपने के पैर के जो टो है इसमें इतनी शक्ति आ जाती है अपने तपस्या से कि वो जो पृथ्वी है वो भी नीचे नीचे चले जाती है उनकी, एक 5 साल की लड़के के सिर खड़े होने से, और हवा सब ब्रह्मांड में रुक जाता है, सो सब हलचल मच जाता है कि क्या हो रहा है। तभी भगवान स्वयं आते हैं, और ध्रुव जब उस तपस्या में आंखें बंद कर वो तपस्या कर रहे हैं तो उनको स्वयं भगवान अपने परमात्मा जो रूप में है वो दर्शन दे रहे हैं, और थोड़े समय में वो अदृश्य हो जाते हैं। तो जब आंखें खोल देखते हैं तो सामने भगवान खड़े हैं, तो भगवान को देखते हैं, तो भगवान को देखने बाद उन्हें 5 साल का लड़का क्या कर रहा है, भगवान सामने आए हैं, भगवान मुस्कुरा रहे हैं और 5 साल का लड़का देख रहा है, और ध्रुव की समस्या को भगवान समझ जाते हैं, तो शंख से उसके सर को स्पर्श करते हैं, जैसे अपने शंख से स्पर्श करते हैं तो ध्रुव के मुख से इस तरह के प्रार्थनाएं आने लगती है, एक के बाद एक। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, पूछते हैं ध्रुव से, पूछो तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव किस लिए आया था, किस तरह की इच्छा लेके आया था ध्रुव ने, लेकिन जैसे भगवान ये पूछते हैं तो ध्रुव महाराज यानी 5 साल का जो लड़का है वो कहता है कि मैं तो ढूंढ रहा था खांच के टुकड़े, लेकिन अभी तो मुझे हीरे मिल गए, तो मैं क्यों मांगू। एक कथा है कि एक व्यक्ति बहुत ही धन के खोज में, उसे ऐसे पता चला कि मेरे पूर्वज ने कुछ धन छोड़ा है लेकिन कहाँ है मालूम नहीं है। तो कहीं ऐसे दूर चला गया ढूंढते हुए, बहुत सारे जगह पे ढूंढते हुए कि कहीं है वो, ऐसे पता लगा है कहीं पे है। तो इस तरह से बहुत साल बीत गया और उस व्यक्ति का मृत्यु हुआ। जब मृत्यु हुआ तो उसके शरीर को फिर से ले आए गए उसी जगह पे जहां से निकल गया था, तो उसके शरीर की क्रिया के लिए जमीन खोद रहे थे तो घर के पीछे ही वो खजाना मिल गया। तो इस तरह से हम सब बहुत सारे विषयों से आकर्षित होकर प्रयास करते हैं कि कहां है खजाना, खजाना हमारे हृदय में ही है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसको पहचानने के लिए ऐसे भक्तों का संग की जरूरत है जो पहचानते हैं। तो इस तरह ध्रुव को पता चल जाता है कि जब दर्शन होता है तो पता चलता है कि जब ये है मेरे पास तो और क्या चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं से कि ठीक है, लेकिन तुमने तो ये विचार किया था तुम्हें तो चाहिए तो ये जरूर मुझे देना पड़ेगा, तो तुम ऐसे करो अभी तुम वापस चले जाओ। तो ध्रुव फिर वहां से, तो इसके पहले बीच में नारद मुनि जाकर मिलते हैं पहले, ये तो सिर्फ 6 महीने में हो जाता है, ध्रुव महाराज की जो तपस्या 6 महीने में होती है, नारद मुनि जाकर उत्तनापाद को बताते हैं। उत्तनापाद बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि मेरे वजह से मेरा लड़का घर छोड़कर चला गया, और कहां गया, जंगल में चला गया, तो उनकी निश्चित ही तो वापस आएगा ही नहीं, और सब कुछ मेरे वजह से हुआ। लेकिन नारद मुनि बताते हैं उनको जाकर कि तुम्हारा बेटा ऐसा ऐसा कर रहा है। और फिर कुछ ही महीने के बाद जब ध्रुव वापस आते हैं तो सबको समझ पता चल जाता है कि ध्रुव वापस आ रहे हैं, तो पूरे राज के सब लोग जाते हैं मिलने को ध्रुव से। और ध्रुव जब देखता अपने सौतेली माँ को देखता है तो भी प्रणाम करता है। तो ये भक्ति की शक्ति, ऐसे नहीं कि ध्रुव देखता है सौतेली माँ को, इसकी वजह से सब हुआ था, इसके हृदय में कुछ है ही नहीं। और सुरुचि भी जब देखती है ध्रुव को, उसको गले लगाती है और गले लगाकर बोलती है कि तू दीर्घ आयु तक, यानी उसके दिल में भी कुछ नहीं रहता। तो इस तरह ध्रुव कितने हजारों साल तक अपने राज्य को संभालते, इस तरह के 5 साल का लड़का ये सब जानने के बाद जब वापस आता है तो पूरी तरह से ग्रस्त जीवन में एक राजा की तरह रहता है। फिर एक ऐसे समय आता है कि ध्रुव का जो भाई है उत्तम, वो कहीं ऐसे शिकार करने जंगल में जाता है, तो वहां पे कोई ऐसे यक्ष लोग उसके ऊपर प्रहार करते हैं, आक्रमण करते हैं और उसमें उसका निधन हो जाता है। और उसके दुख में जब सुरुचि लूटते चली जाती है तो वो भी, यानी ध्रुव की सौतेली माँ, उनका भी कुछ ऐसे ही कुछ वन में अग्नि में उनका भी निधन हो जाता है। जब ध्रुव को ये पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो अपने भाई के लिए, अपने भाई के लिए वो उस जगह पे चले जाते हैं जो यक्ष ने आक्रमण किया था। तो ऐसे जगह पर जाकर ध्रुव घोषणा करते हैं युद्ध के लिए। तो जैसे वो यक्ष लोग सब सामने आ, इस तरह में एक योगी सिद्धि होती है कि ध्रुव के सामने इस तरह का आक्रमण होता है कि पूरी तरह से वो क्या बोलते हैं, उनके हथियार से पूरा आवरण हो जाता है। ऐसे देवता भी देखते हैं कि अभी ध्रुव कैसे बच सकता है इससे, लेकिन ध्रुव इतनी तरह इस तरह से युद्ध करता है तो पूरे जो आवरण है सब मिट जाता है। उदाहरण दिया जाता है कि जिस तरह से पर्वत है, पर्वत के जब बारिश होती है तो मेघ से पूरा पर्वत ढक जाता है, लेकिन जब बारिश होती है तो मेघ चला जाता है, तो सिर्फ क्या होता है, पर्वत एकदम शुद्ध दिखता है। उस तरह से ध्रुव पूरी तरह से और शक्तिशाली हो जाते हैं, तो सब कुछ शांत हो जाता है। तो आचार्य बताते हैं कि जब शांत हो जाता है तो ध्रुव ऐसा नहीं सोचता कि मैं अभी उन लोगों को वश में कर दिया है, मैं जीत गया है। ध्रुव सिर्फ इंतजार करते रहता है कि अभी कुछ और होने वाला है। तो आचार्य बता रहे हैं कि हमारे भी भक्ति में हमें कई बार ऐसे लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन माया की शक्ति जो है वो किस तरह से आक्रमण करेगी, कहां से आएगी, कब आएगी, ये हमें मालूम नहीं पड़ता। इसलिए कई बार लोग बात कहते थे कि मेरा यही चिंता है कि मेरी जो शिष्य है जितना माया से डरना चाहिए उतना नहीं डरते हैं। तो यहाँ एक ध्रुव एक उदाहरण अपने इस कार्य से बता रहे हैं कि किस तरह से वो थोड़ी देर के लिए भी हो ऐसे नहीं किया कि उन्होंने कि अभी सब कुछ मेरे वश में है, बस इंतजार कर रहे थे कि अभी कुछ होगा। जब यक्ष लोगों ने तो कुछ ही समय में फिर से ऐसा भयंकर ऐसे कुछ हुई कि आकाश में सब क्या बोलते हैं माया, इस तरह का सब माया भी तक सब प्रकट हो गया, जहां पे ये सब क्या बोलते हैं मांस की तरह या अपने लस खून ये सब वहां यहां से सब गिरने लगे। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, कोई भी विचलित हो सकता है। ये सिर्फ दिखाने के लिए कि हमें किस तरह माया की शक्ति कभी भी किसी तरह हमारे ऊपर आक्रमण कर सकती है। तो भक्ति के मार्ग में कभी कोई व्यक्ति ये नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ अभी ठीक चल रहा है। हाँ, ये उदाहरण दिया जाता है ना, अगर नदी पे अगर दूसरी दिशा में आप तैर रहे हैं तो आप ये नहीं सोच सकते कि अभी थोड़ी देर तक मैं तैरना छोड़ देता हूं तो मैं वही जगह पे रहूंगा, ऐसा हो सकता है? अगर तैरना छोड़ दिया तो इसका मतलब डूब जाएगी नहीं और दूर चले जाएगी। लेकिन भगवान की ओर जाना है ना, माया शक्ति के विरुद्ध जाना है तो तैरते रहना पड़ता है विरुद्ध। तो ये ध्रुव की इस कथा में आती है कि आचार्य लोग बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने ये सब यक्षों का विरोध किया और उसके बाद इस तरह से युद्ध करने लगे, इस तरह से युद्ध करने लगे, इतने लोगों का हत्या होने लगी कि स्वयं अपने परम पिता स्वयं को मनु को आना पड़ा और ध्रुव को कहना पड़ा कि ध्रुव इतना क्रोध अच्छा नहीं है, ये लोग निर्दोष हैं तो इतने लोगों को मार रहे हैं। तो ध्रुव ने फिर स्वीकार किया, ठीक है मैं जो कर रहा हूं सही नहीं है, गलत है उन्होंने। लेकिन ध्रुव की देखो क्यों इसने किया, सिर्फ अपने भाई भाई के लिए, यानी वो भक्त होते हुए राजा होते हुए जब इस तरह का एक विषय आया तो पूरी तरह से वो युद्ध करने लगे। इसी के साथ कुबेर जो होते हैं, कुबेर स्वयं मनु बताते हैं कि ये कुबेर के अनुयायी हैं ये सब, तो इन लोगों की हत्या करना गलत है। तो फिर वो कुबेर आकर खुद वो भी उनसे पूछते हैं कि ध्रुव से, और ध्रुव यही पूछते हैं कि मेरे लिए क्या चाहिए, कुबेर निदान चाहते तुम्हें क्या चाहिए। तो ध्रुव यही पूछते हैं कि मैं हमेशा मेरे स्मरण में भगवान रहे और मैं उनकी सेवा करते रहूं। तो ये घटना होने के बाद ध्रुव वापस अपने राज्य में आ जाते हैं और कई सालों तक 36,000 वर्षों तक वो राज्य का पालन करते हैं। और उसके बाद जब समय आता है कि अभी रिटायर होना है तो अपने पुत्रों को, ऐसे नहीं कि हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं हमारे कभी कभी खींच के उठाना पड़ता है कि अभी बहुत हो गया। जापान में सुना गया है कि कोई 100 साल से बोलना पड़ा कि अभी बहुत हो गया छोड़ दो, बोलना पड़ा। लेकिन ध्रुव ने सही समय पे आने पर उन्होंने कहा ठीक है अभी मैं तैयार हो जाता हूं जाने के लिए। तो फिर ध्रुव अपने तैयारी करते हैं जाने के लिए, तो तभी कुछ ही समय में वैकुंठ से बाहर आता है उनको ले जाने के लिए नंद सुनंद आते हैं। वो जब आते हैं वहां और ध्रुव जा रहे हैं और उनके सामने मूर्तिमान मृत्यु सामने आती है, तो ध्रुव मूर्तिमान मृत्यु के ऊपर पैर रखकर उस वैकुंठ से जो आया वाहन के ऊपर जैसे अंदर पैर रखते हैं तो उनके दिल में याद आता है मैं मेरी मां को छोड़ के कैसे जाऊं। उनको मां याद आती है क्योंकि सुनीति के वजह से तो सब कुछ हुआ है। सुनीति ने कहा कि तुम्हें जंगल जाना है, तो अपने मां के बारे में पूछते हैं मैं ठीक हूं मैं तो जा रहा हूं लेकिन मेरी मां कहां है। तो सुनंद और सुनंद दिखा दी कि देखो तुम्हारी मां जा रही है तुम्हारे पहले ही। साचार्य ने बताया कि जब भक्ति में लोग आते हैं तो कई बार माता पिता बहुत नाराज होते हैं कभी उनमें, हाँ कई बार ऐसे होता है कि कई बार नहीं बहुत बार होता है ज्यादातर होता है। अगर लड़का चाहता है कि भक्ति में ज्यादा समय दे लेकिन माता पिता चाहते हैं इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, हीरो के साथ खेलना अच्छा है। ध्रुव जैसे ध्रुव कहता है कि मुझे हीरे की जरूरत नहीं है अभी मुझे कांच के टुकड़ों की जरूरत नहीं है, ये माता पिता चाहते हैं कि तुम हमारी तरह ही तुम भी कांच के टुकड़ों के साथ खेलते रहो और कट जाएगा यही जीवन है। लेकिन यहां बताया गया है कि अगर किसी परिवार में अगर कोई एक भक्ति में आगे बढ़ता है तो उसके माता पिता को कितना फायदा होता है कि माता पिता भी उसी दिशा में जाते हैं सिर्फ क्योंकि घर में कोई भक्ति कर रहे। तो इस तरह ध्रुव महाराज 36,000 वर्ष तक ये करने के बाद जैसे उन्होंने मांगा था, उन्होंने ये वरदान मांगा था, उन्होंने वो चाहते थे कि मेरा ब्रह्मा जी से भी बड़ा ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, ब्रह्मा जी से भी बड़ा। तो उनके इच्छा के अनुसार भगवान उनको इस तरह के ग्रह देते हैं राज्य करने के लिए। वो ग्रह ऐसा है ध्रुव, पोल स्टार, इंग्लिश में पोल स्टार, ध्रुव लोग। अभी ध्रुव लोग ऐसा लोग है जो इस भौतिक संसार में है लेकिन प्रलय के समय भी उसका नाश नहीं होता है। यानी इसका मतलब ब्रह्मा जी का जो है लोग के उससे भी ऊंचा लोग है, ब्रह्मा जी का भी तो लोग चले जाते। तो इस तरह भगवान ने जो उसकी इच्छा थी हाँ उसके हृदय में था वो भी बनाए रखा। उसके साथ साथ क्योंकि नारद मुनि के कहने के अनुसार उसने भक्ति में आगे आगे गए, तो इसी कारण उनको दोनों तरह से भौतिक और आध्यात्मिक तरह से जो उनकी इच्छा थी ये मिला। तो इस तरह हमें बहुत सारे इसमें सीखने मिलता है कि जब भगवान इस तरह की लीला रचाते हैं तो इन लोगों के माध्यम से हमें बताते हैं। जैसे स्वयं मानो मुनि बहुत बड़े राजा थे लेकिन राजा होते हुए भी उन्होंने किस तरह का गृहस्थ जीवन निभाया, उसी तरह से देवावती के बारे में बताया गया है और उसी तरह से ध्रुव। तो ऐसे ऐसे अनेक ऐसे लीलाओं में ये हमें समझ में आता है कि किस तरह से हम हमारे निजी जीवन में भक्ति को किस तरह से बैलेंस करें। धन है या धन नहीं है, कौन से स्थिति में है नहीं है ये जरूर नहीं है, लेकिन हर एक स्थिति में ध्रुव के इस तरह के उदाहरण से हम प्रेरणा ले सकते हैं। तो ध्रुव में इतनी दृढ़ता थी कि वो और कुछ नहीं चाहता था। जब तक इस तरह की जो क्या बोलते हैं एक दृढ़ता नहीं आती है तो भक्ति में आगे बढ़ना कठिन है। अगर आगे नहीं बढ़ रहे तो क्या आएगा, आलसपन है। और भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा, सबसे बड़े दो हमारे कौन है, दुश्मन कौन है, सबसे बड़े आलसपन और नित्यांकार। नित्यांकार का मतलब क्या है, हर विषय में अगर हम सोच रहे हैं कि इससे मेरा क्या फायदा है, मैं और मेरा, ये जो मैं और मेरा है ये कहने के लिए बहुत आसान है लेकिन ये आसानी से टूटता नहीं है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जब तक वो है तब तक भगवान आकर्षित नहीं होते हैं, तो फिर उसको कैसे तोड़ दें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जब तक इस तरह के हृदय कोमल नहीं होता, कोमल का अर्थ है त्रिनाद अभी सुनी से ना सुनने से हम थोड़ा सा भयभीत हो जाते हैं, कैसे हो सकता है। लेकिन ये जब हृदय शुद्ध होता है तो धीरे धीरे इस तरह के गुण आने लगते हैं कि तृण से भी ज्यादा अमान ही न माना देना। तो जब ऐसे होता है तो फिर भगवान आकर्षित होते हैं इस तरह के हृदय से। तो ये है गुरु महाराज की कथा और की कथा। तो इस तरह ये सब जो व्यक्ति हैं इन लोगों के कथा सुनने से हमें प्रेरणा मिलती है भक्ति के लिए। इसलिए हम हमारी जो गौड़ीय प्रथा है उसमें हम जन्माष्टमी रामनवमी ये तो मनाते ही है लेकिन ऐसे आचार्य लोगों की तिथि भी मनाते हैं, इसीलिए कि उनके जीवन चरित्र से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। अगर प्रेरणा नहीं मिलेगी तो हम भक्ति कैसे करेंगे। सिर्फ भागवतम पढ़ने से प्रेरणा मिलती नहीं है, ऐसे व्यक्ति किस तरह से जीवन में बिताते हैं। जैसे कुछ ही दिन पहले हमने भक्ति विनोद ठाकुर के बारे में हमारे इसमें भक्ति विनोद ठाकुर कुछ ही साल पहले कहा जाता है कि वो इतने बड़े धनवान घर में जन्म लिया है उन्होंने, उनके जो परम पिता है वो कलकत्ता कलकत्ता शहर के मालिक थे ने, कलकत्ता के कुछ ऐसे बड़े बड़े थे उसमें से एक भाग था उसके मालिक थे। और 1838 में उनका यहाँ पे प्रकट हो गए और उसके बाद वो ऐसे एजुकेशन प्राप्त किया उन अंग्रेजों के, जब अंग्रेजों का राज चल रहा था तो ऐसे स्कूल में ही गए, इंग्लिश स्कूल में, बहुत सबसे अच्छे स्कूल में गए। और उन्होंने शुरुआत में ओडिशा में इंग्लिश मीडियम शुरू किया उन्होंने उन दिनों में, आप सोचिए 19th century, उन दिनों में उन्होंने ओडिशा में पहली बार इंग्लिश। और उसके बाद जब वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन गए तो कलकत्ता में ऐसे लोगों के साथ रहते थे, बहुत ही विद्वान लोग, सब अंग्रेज लोग ज्यादा, उन लोगों के लिए सब यही समझता कि ये जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म यानी ये तो एकदम अंधश्रद्धा है, इसमें कुछ है नहीं, अगर कोई भी विद्वान व्यक्ति है ये हिंदू धर्म को तो त्याग करना चाहिए और उसे क्रिश्चियन धर्म को स्वीकार करना चाहिए, ऐसे अंग्रेजों के इसमें और उन लोगों के साथ में वो मिलते फिरते बैठते थे, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे। लेकिन उनके संस्कार बहुत अच्छे थे, उनकी जो दादाजी थे वो बड़े भक्त थे। जब उन्होंने श्रीमद भागवतम पढ़े तो तभी उनको पता चल गया कि इसमें क्या है। तो उन्होंने ये भी पढ़ा, उन्होंने कुरान भी पढ़ा, उन्हें बाइबल भी पढ़ा और सारी भाषा भी जानते थे। उसके बाद ये सब जानने के बाद जब वो बोलने लगे कि ये जो सनातन धर्म क्या होता है, तभी पहली बार लोगों को थोड़ी श्रद्धा बढ़ गई, अंग्रेजों को भक्ति विनोद ठाकुर के ऊपर कि ये जो बोल रहे हैं सही है, क्योंकि उनको सही लगा। इसलिए उनके लिए खास करके कभी किसी ने किया नहीं ऐसे, कोर्ट कृष्णनगर में होता था और नवद्वीप में रहते थे, उन लोगों की अलग से रेल की पटरी लगाई गई ताकि ट्रेन उनके आने जाने में उनको सुविधा हो, क्योंकि इतनी इज्जत करते थे, धर्म का पालन करते थे लेकिन इतना इज्जत। कहा जाता है कि उनका जो निर्णय लेने का जो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है तो उनको जो निर्णय लेने का वो आज इतिहास में अभी भी उसे बना के रखा है कि इस तरह के निर्णय लिया उन्होंने, बहुत ही अनोखा ऐसे भगवान के भक्त। तो इस तरह ऐसे व्यक्तियों के बारे में सुनने से हमें प्रेरणा मिलती है कि किस तरह से हो। अभी उनका जीवन के बारे में आप सुनेंगे तो वो बहुत ही अजीब सा था उनका, सिर्फ रात को 8 से 10 बजे सोते थे 2 घंटे, उसके बाद 10 बजे से लेकर 4 बजे तक वो अनुवाद करते थे, 4 बजे से फिर थोड़ा आधा घंटे के लिए थोड़ा सो जाते थे। इस तरह से वो सिर्फ 6 घंटा अपने ड्यूटी में लगाते थे, कोर्ट में जाते थे, बाकी के समय में थोड़ा कुछ सोए और बाकी के सब समय 100 से ज्यादा उन्होंने किताब लिखा, कितने ऐसे भजन लिखे हैं तो आजकल भी हम सुन रहे हैं। और लोगों से मिलते थे हर दिन शाम को, गांव में जाके प्रचार करते थे और अलग अलग तरह से सोचते थे कैसे से प्रचार कर। पहली बार उन्होंने 1896 में जो भागवत है उसको उन्होंने पहली बार पाश्चात्य देश में भेजा 1896 में, और उसी साल इसका जन्म हुआ श्रील प्रभुपाद का। तो उनकी 3 ऐसी एक प्रेडिक्शन थी कि एक दिन ऐसा आएगा एक व्यक्ति जो इस संसार में सब जगह पे जाएगा और भगवान के हरिनाम की महिमा का प्रचार करेगा, और यही नहीं भगवान के नाम फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, रशिया, ऐसे जगह भी भगवान के नाम हुए। और तीसरा प्रेडिक्शन ये था उनका कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो अमेरिकन है, रशियन है, जर्मन है, वो लोग बंगाली वैष्णवों के साथ हाथ मिला मिला कर भगवान का हरिनाम करेंगे। ऐसे किसका था प्रेडिक्शन? भक्ति विनोद ठाकुर। और ये तीनों ये जो भी है ये प्रभुपाद ने करके दिखा, और 1986 में पहली बार पहली बार ऐसे हुआ कि इतने प्रदेश से सब लोग आए थे मायापुर में, अलग अलग रंग के, अलग अलग रंग के थे उसमें, कुछ पीले रंग के भी थे, कुछ गोरे रंग के थे, कुछ काले रंग के। जो भक्ति विनोद ठाकुर ने जो घोषणा की थी वो 1986 में प्रभुपाद की कृपा से मायापुर में हजारों लोग, वैष्णव लोग सब हजार हजार लोग आए और भगवान के हरिनाम करने लगे। सो ये भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने पहली बार ये भागवतम किस तरह से पाश्चात्य देश में पहली बार भेजा। तो उनका ऐसा था कि वो उनके कार्य में वो कभी जो भी ढोंगी लोग हैं उनके उनको बर्दाश्त नहीं करते थे, जो भी है सामने उनके जाकर उनके बारे में बताकर उनको जेल में डाल देते थे, इतनी उनके एक निर्भय थे। और उसी तरह से जो भी वैष्णव को मिलते थे तो उसी तरह से बहुत नम्र होते थे उनके सामने बहुत, तो दोनों तरह से करते। फिर एक समय आया कि उनको जगन्नाथपुरी जाना पड़ा कि वहां पे उनको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के रूप में गए हुआ। फिर वहां के मंदिर में जो हो रहे थे जगन्नाथपुरी के, वहां पे कुछ पुजारी लोग जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए वैसे नहीं होता था, लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने पहली बार वो सब स्टैंडर्ड सेट किया। आप सोचिए उनके वहां के पुजारियों में ये सब परिवर्तन ले आना कितना आसान नहीं है, तो इसके मतलब उसमें क्या पावर थे उन्हें भक्ति विनोद ठाकुर। तो साथ साथ वो ये भी प्रार्थना करते थे कि इतने सारे सनातन धर्म के नाम पे सब गलत हो रहा है तो मैं किस तरह से प्रचार करूं। तो एक भगवान से प्रार्थना करते कोई ऐसा व्यक्ति आएगा, एक ऐसा पुत्र आएगा जो ये प्रचार करेगा। तो एक समय था कि वो जगन्नाथ रथ के जो रास्ता है उसके उनका घर उनके पास ही था, तो जब रथ यात्रा के समय ये रथ उनके घर के सामने रुक गया और उनकी पत्नी भगवती, 2 महीने का जो बच्चा था, क्योंकि रथ रुक गया था तो 2 महीने के बच्चे को उठा के रथ पर चढ़ गई। तो मंदिर के सुपरिटेंडेंट की पत्नी है तो किसी ने रोका नहीं उन्हें, तो ऊपर गई, ऊपर करके 2 महीने के बच्चे को सामने रख दिया भगवान के सामने। और ये 2 महीने का बच्चा हाथ ऐसे ऐसे हिलाने लगा, तो जैसे ऐसे हाथ हिलाया तो भगवान के शरीर से जो माला थी पुष्प माला वो बच्चे के ऊपर गिर गया। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर को सुनने में आया कि ऐसा ऐसे हुआ, तो वो समझ गए तभी कि मैंने जो प्रार्थना किया था कि ऐसा कोई व्यक्ति आएगा वो आ गया। और वो कौन था? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तो उन्होंने यहाँ पे 64 ऐसे कितने मठ बनाए, उसके बाद में प्रभुपाद ने उसे उसी आंदोलन को आगे बढ़ाया। और इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर के जितने जो एक प्रेडिक्शन थे वो प्रभुपाद ने करके देखा। सो इस तरह से भागवत में ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों की कथा आती है, हमको सुनने मिलती है। वैसे अनेक ऐसे हैं। तो ये जो कर्दम मुनि और देवती की कथा में हमने ये देखा है कि किस तरह से एक, हम ये नहीं कह रहे कि पति ये सुनता है और कहता है कि देखो पत्नी को ऐसे होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पे कर्दम मुनि इस तरह के पूरी तरह से आश्रय लिया हुआ था उन्होंने भगवान का। तो जब इस तरह के व्यक्ति की जब पत्नी सेवा करती है तो फिर उसको अलग से कुछ प्रयास नहीं करना, लेकिन कलयुग में पति और पत्नी को दोनों को प्रेरित होने के लिए साथ साथ ऐसे भक्तों के संग में जाना पड़ता है। सही है? तो ये है कि किस प्रभुपाद ने कहा है कि एक पति है, पति को बहुत ही मेहनती होना चाहिए और बहुत ही जिम्मेदार होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल, मेहनती होना चाहिए, जिम्मेदार। बोलते प्रभुपाद इससे ज्यादा योग्यता क्या चाहिए? कभी प्रभुपाद पूछते हैं किस तरह के लड़के से शादी करना चाहिए, बोलते ये 2 गुण देख लो, क्या मेहनती है? हाँ मेहनती है। जिम्मेदार? हाँ जिम्मेदार। तो फिर क्या चाहिए? और पत्नी के लिए प्रभुपाद ने कहा है कि पत्नी को जो कुछ पति के बारे में ये बताया गया कि वो पत्नी के जो जरूरतें हैं उसको पूरी करना चाहिए। इसका मतलब पत्नी ये सोचना चाहिए नहीं चाहिए कि चलो ज्यादा से ज्यादा मांग लेते हैं क्योंकि ये पति का कर्तव्य है। तो पत्नी के बारे में बताया गया है कि पत्नी जो कुछ भी पति लाके देता है उससे वो एकदम प्रसन्न रहती है। कैसा है बैलेंस? पति चाहता है कि मैं मेरे पत्नी की जो कुछ जरूरत है मैं पूरी तरह करूं, और पत्नी सोचे कि जो कुछ भी मेरे पति देंगे मैं उसे ही। तो इस तरह पति और पत्नी के बारे में प्रभुपाद ने कहा है कि कैसे रस जीवन में ये जो रिश्ता है, जो आपने आपने देखा कैसे देवाहुति उन्होंने सिर्फ सेवा किया खड़गा होने का, लेकिन क्या हुआ? तो ये सब सक्सेस स्टोरी है भागवत में। ये कितने सारे हैं, स्वयं हुआ मनु, ध्रुव महाराज, देवाहुति, ऐसे अनेक ऐसे कितने आप कथा सुन रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने एक अपना एक पद चिन्ह छोड़ा है। ठीक है, जो भक्ति कर रहे हैं आपको ऐसा नहीं है कि उन दिनों में हुआ है तो आज के दिन कैसे करें हम, लेकिन कथा का सार यही है कि कैसे हम अपनाएं अपने जीवन में।